समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है अग्नि सुरक्षा के उपायों से जानमाल की रक्षा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोंकर जी और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के निदेशक अतुल गर्ग। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। धन्यवाद निखिल जी।
और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और हमारे दूसरे नंबर 2342105 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और अतुल जी, मेरा पहला प्रश्न आज का आपसे यह है कि अग्नि सुरक्षा का अर्थ क्या है, आग कैसे लगती है और आग लगने के बाद बचाव के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आग कैसे लगती है। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, ह्यूमन नेग्लिजेंसी हो सकती है या कोई फिर आर्जन या एक्सप्लोजन हो सकता है। और तीनों ही केस में जो है सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है और काफी भयावह भी हो सकती है। आग लगने पे मेरा ये सभी श्रोताओं को ये संदेश है कि आपके पास जो भी फायर सर्विस हो, पुलिस है, जो भी है, सबसे पहले आप उसे कॉल करें। मतलब आप मदद की गुहार लगाएं सबसे पहले, फिर आग बुझाने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी आप जो मदद पहुँचाने वाली संस्था है उसको आप खबर कर देंगे वो जल्दी पहुँचेगी, क्योंकि रास्ते में टाइम भी लगता है, ट्रैफिक भी होता है। और उसके बाद आप खुद को बचाएं, आग को बुझाने की कोशिश करें, जो भी आपके पास संसाधन है उसका यूज करके आग को बुझाएं। अगर आप पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में मदद बुलाते हैं जब आग बड़ी हो जाती है, तो उसमें फिर जो है थोड़ा डिले हो सकता है और आग को बढ़ने में 2 से 3 मिनट में ही आग काफ़ी भयावह हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप मदद के लिए गुहार लगाएं, कॉल करें जो भी सुविधा आपके पास हो और फिर आप आग बुझाने की कोशिश करें।
और इस बीच आज के हमारे पहले कॉलर दिल्ली से राकेश तेवतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए।
धन्यवाद सर।
धन्यवाद जी, प्रश्न पूछिए।
करूं मैं क्वेश्चन अपना?
बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ सर, ऐसा हमारा काम सीएनजी का ही है। तो जैसे यार्ड में हम काम करते हैं, सीएनजी गाड़ियां भी खड़ी होती है, हमारे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं हम, या तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये थोड़ा जानकारी दे
जी। अतुल जी
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी कल भी रात एक आग लगी थी ऐसे ही। अगर आप सीएनजी का काम करते हैं और वेल्डिंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक सेफ डिस्टेंस रखें वेल्डिंग करने में और बाकी चीज़ों में। दूसरा ये है कि वेल्डिंग में, क्योंकि देखिए स्पार्क होता है और हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब टेम्परेचर उस जगह का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपने आसपास जरूर कुछ ना कुछ जो है एक फायर आग बुझाने का अगर लगती है संसाधन जरूर रखना है, चाहे पानी की बाल्टी रखें, फायर एक्सटिंग्विशर रखें, जो भी रखें। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके आसपास के दायरे में कोई जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, उसके आसपास कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी चीज, कपड़ा कोई, मतलब मेरा यह कहना जो चीज जल सकती है वो चीज आसपास नहीं होनी चाहिए, तभी यह सुरक्षा बन पाएगी।
और इस बीच रायबरेली से हमारे आज के दूसरे श्रोता हैं रमा शंकर वाजपेयी जी। रमा शंकर जी, आपका सवाल क्या है?
हमारा सवाल ये है कि सर, जिस तरह देहातों में बड़ी दूर दूर कहीं भी फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं होता और कभी कभी फायर ब्रिगेड आते भी है तो उनमें भी पानी नहीं और स्थानीय जगहों में भी पानी नहीं होता, उस समय क्या किया जाए?
जी प्रशांत जी, आप किस प्रश्न का उत्तर देंगे?
नमस्कार रविशंकर जी, रमा शंकर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली सरकार में, केंद्र सरकार में ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है। जो सवाल आपने पूछा उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए एक हमारा बीच में हमारी एक स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल एक कमेटी होती है, जिसमें सारे देश के जो वरिष्ठ अधिकारी है, डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स होते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और उसमें एक हमने मतलब डिसीजन लिया था और वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे देश में, कि क्योंकि जैसे गांव देहात में तो फायर सर्विस की दूर दूर तक बहुत दूर होता है, जिले में होता है या तहसील में होता है, तो ऐसे केस में जो विलेजेस में एक विलेज पार्टी बनाने का हमने एक प्रोविजन किया था। विलेज पार्टी में यह है कि जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत जो आपका नियरेस्ट फायर स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन है, उनके पास जाए और वो लोग वहां पे गांव में आके आपके गांव में जो 30-40 लोग होंगे उनको एक ट्रेनिंग दे, बेसिक ट्रेनिंग। और उसके लिए जो सामान चाहिए बेसिक फायर फाइटिंग के लिए, जो भी सामान चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, उसकी आपको ट्रेनिंग दे और आपको आत्मनिर्भर बनाए। तो हमारा ये दृष्टिकोण है कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि फायर सर्विस 80 किलोमीटर दूर से आएगी तब तक काम सब हो चुका होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत और जो छोटे गांव है वो उसमें आत्मनिर्भर हो, लोगों में जागरूकता गांवों में फैले और वो लोग इसमें खुद ही जो ऐसी छोटी घटनाएं होती है उस पर काबू पाने का कोशिश करें। बिकॉज ये असंभव है कि दूर से कोई आएगा और आपको फायर फाइटिंग में मदद करेगा। उसके लिए केंद्र सरकार ने अभी 15 फाइनेंस कमीशन में 5,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, जो कि 75% जो है केंद्र सरकार देगी और 25% जो है राज्य सरकार उसमें अपना योगदान देगी। तो करीबन 6,000 करोड़ का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज तक देश के इतिहास में पहली बार फायर सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए इतना पैसा मिला है। तो उसी पैसे में से आपके जो फायर सर्विस के लोग हैं वो आपके गांव को सुसज्जित करा सकते हैं, आत्मनिर्भर करा सकते हैं। मेरी आपके इस प्रोग्राम से और बाकी लिसनर्स से उनको भी यही दरख्वास्त है कि आप जो है आपके डिस्ट्रिक्ट फायर सर्विस के पास जाइए और उनको इस स्कीम के लिए बोलिए कि हमें ट्रेनिंग दे और हमें एक आत्मनिर्भरता के और बढ़ने के लिए हमें प्रशिक्षित करें।
और इस बीच इंदौर से हमारे अगले श्रोता हैं अनिल। अनिल जी आपका सवाल क्या है?
सर हमारा प्रश्न है कि जब कोई आग लगने की घटना होती है तो और अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, जल जाता है, तो आसपास के लोगों को प्रारंभिक सुरक्षा के तौर पर क्या करना चाहिए? क्योंकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी आने में और पानी के टैंकर आने में तो काफी वक्त लग जाता है, तो उपस्थित लोगों को उस समय आग बुझाने के लिए और जो घायल है उनके सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए?
जी अतुल जी।
अनिल जी नमस्कार, आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई जगह ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड में पहुंचने में देर होती है। इससे पहले मैंने अभी कहा था कि आपने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, जो भी हेल्प जहां से मिल सकती है उसको बुलाना है। और मैं ये कहूंगा कि आग बुझाना एक थोड़ा सा तकनीकी काम है, अगर आपको इसमें ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आपने फिर आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपने और अपने जो भी परिवारजन, जो प्रियगण हैं, उनको किसी भी तरीके से बाहर लेके आ जाएं और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाएं। सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आप कहते हैं कि फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और आप उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में आपको ये करना है कि आसपास के लोगों को जागरूक बता देना आग लग गई है, जितने आपके लोग हैं उन सबको लेके बाहर जाना है और दोबारा आग के अंदर किसी भी चीज़ को, कोई पेपर छूट गया, कोई पैसे छूट गए, उसके लिए दोबारा अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वो अंदर गए तो ये बहुत घातक हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। अगर आपके पास पानी का कोई संसाधन है तो आप उसको बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी एक डिस्टेंस है। अदरवाइज मेरा ये कहना है कि आप फायर ब्रिगेड को गाइड करें, उनको रास्ता बताएं, क्योंकि कई बार हमें होता है, हम दिल्ली में हैं, एड्रेस ढूंढने में टाइम लगता है, गलियां बंद होती हैं, नहीं पहुंच पाते। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें ये होगा कि आप जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड पुलिस को बुलाएं और उनको रास्ता बताएं, उनको गाइड करें और भीड़ ना लगने, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी हम आग बुझाने जाते हैं तो उसके करीब 300-400 मीटर पहले लोग जमा हो जाते हैं, लोग गाड़ी रोक के स्कूटर देख के जो है वो तमाशा देखते हैं और फायर ब्रिगेड उसमें लेट होती है। तो अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है जान माल हम ज्यादा बचा पाएंगे, प्रॉपर्टी हम ज्यादा बचा पाएंगे।
प्रशांत जी एक मेरे मन में सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, खासतौर पे जो बिजली के करंट की वजह से ही लगती है, उसमें सावधानी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से रखनी चाहिए क्योंकि करंट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है यदि आप आग बुझाने की कोशिश करते हैं।
बहुत एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, बिकॉज आप देखिए पूरे देश में जितनी आग की घटनाएं होती है आपको ये दिखा देगी वहां शॉर्ट सर्किट हुआ। तो सबसे पहले इसकी जड़ को आपको खत्म करना चाहिए। जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है ये आपको थोड़ा सा समय लगेगा, चेक करने में कि ये वायरिंग हमारे यहाँ ठीक है, इसकी जो इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर रेटिंग के है, हमारे पास जो MCBs लगे हैं या जो भी यंत्र लगे हैं वो सही मापक के लगे हैं, और उसकी लगभग मतलब साल में कम से कम आधे साल में या साल में एक दो बार उसकी जांच करें, और उसके बाद ये आपको शॉर्ट सर्किट का संभावना कभी नहीं होगा। जब आपके पास कोई नए इक्विपमेंट्स आते हैं तो एक बार इलेक्ट्रिशियन से ये जरूर पूछिए कि हमारा जो लोड बैलेंस है वो सही है नहीं है, ये पहला प्रिकॉशनरी मेजर्स है। अगर ये आपने कर दिया तो आपके यहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें कि आपने जैसे कोई कंडक्टर लेते हैं, कोई नया इक्विपमेंट लगाते हैं या टू पिन लगाते हैं, उसको ज्वाइंट कर देते हैं, उसके बाद टेप नहीं लगाते हैं, तो ऐसे चीज़ें मत करिए, छोटे पैसे बचाने के चक्कर में बड़ी दुर्घटना टाली जा सकती है, ये प्रिवेंशन पे आप जरूर जोर दीजिए। दूसरा यह है कि अगर ऐसे समय में आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले आपको काम करना है कि आपके यहाँ से बिजली का जो मेन स्विच है बंद कर दीजिए। बिजली का मेन स्विच आपने बंद कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिकेशन की संभावना जीरो हो जाती है। उसके बाद फायर को फाइट करने के लिए पानी है या जो भी आपके पास सामान है उसका उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी जैसे गर्ग साहब ने बताया आपको कि उसके बाद फायर सर्विस को आप कॉल करिए और वो आपकी आगे की कार्रवाई होगी।
और इस बीच में फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनवर जी क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से आप?
नमस्कार सर।
नमस्कार,
मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से।
जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं स्पोर्ट्स कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी कपड़े की है
जी,
तो कपड़े की कंपनी में आग लगने का खतरा कुछ ज्यादा होता है, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जी अतुल जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
अनवर बिहारी जी नमस्कार, ये जो आप कह रहे हैं कपड़े की फैक्ट्री उसमें आग लगने का जो है मतलब संभावना ज़्यादा होती है, ये आपकी बात थोड़ी सही है, लेकिन आपको इसका मूल कारण ये आग क्यों लगती है, आग तीन चीज़ों से की वजह से लगती है, या तो इलेक्ट्रिक में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, या ह्यूमन नेग्लिजेंस हुआ, जैसे कि किसी ने सिगरेट छोड़ दी, कोई बीड़ी पी रहा है छुप छुपा के और वो जलती रह गई, या फिर कोई और बात हुई है, कोई प्रेस है कुछ है हीटिंग इक्विपमेंट है या हीटिंग जगह है उसकी वजह से आग लगती है। तो अगर हमें जैसा अभी अभी लोनकर साहब ने भी बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा जो आग लग रही है वो 60% फायर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से लगती है, तो अगर हम आप अपनी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिक ऑडिट कराते हैं या कराते रहते हैं और लोड की चेकिंग करते रहते हैं, मल्टी प्लगिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आग लगने की संभावना बहुत कम है। और अगर आपकी फैक्ट्री में स्मोकिंग रूम है बना हुआ है जहाँ पे लोग जाके एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आग नहीं लगेगी। तो अगर आप ये दो तीन चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है 90% संभावना जो है आग लगने की बहुत कम हो जाएगी।
और हिसार हरियाणा से हमारे अगले श्रोता है राजेंद्र। राजेंद्र जी सवाल पूछिए।
नमस्कार जी, निखिल कुमार जी और विशेषज्ञ अतुल जी को भी नमस्कार है। जी मैं एक सवाल जानना था, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनका निकलने का रास्ता एक ही होता है, तो क्या अग्निशमन विभाग ये भी देखता है क्या, मतलब भाई दूसरा रास्ता निकलने का है नहीं, या रास्ते में कोई ऐसा कोई तार या कोई चीज या बेड या कुछ ऐसा रखे है जिससे आग लगने के ज्यादा चांस रहते हो?
जी प्रशांत जी,
तो इसका जांच करते हैं। और दूसरा ये जानना था कि जो गैस सिलेंडर होता है जो आग बुझाने का, उसकी क्या जानकारी है वहां, इस तसल्ली करी जाती है क्या चलाना
हाँ।
आता
है
या नहीं आता, इसके बारे में से
जानते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, सबसे पहला सवाल आपका ये पूछा कि जो निकास का जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी भवन हो, कोई भी बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम दो निकास के रास्ते जरूरी है, मस्ट है। और फायर ब्रिगेड के रूल्स में ये मैंडेटरी है कि दो निकास के रास्ते जरूरी है। बट अब होता क्या है कि जैसे कई जो पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने घर है, वहाँ पे एक ही रास्ता होता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जितनी अभी अभी हैदराबाद में एक्सीडेंट हुआ था, 17 लोगों की जान गई, एक अभी सातारा में बीच में एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसे, या फिर हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो जितनी सारी एक्सीडेंट्स ये होती है ये बहुत छोटे एरिया में होती है, संकीर्ण एरिया में होती है, और वहाँ पे जैसे पहले भी आपको बताया गया कि जो आग की घटना है उसमें जो कैजुअल्टीज होती है वो धुएं के कारण होती है, निकास का मार्ग नहीं मिलने के कारण होती है। तो निकास सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है, क्योंकि अगर आग की घटना होती है तो आपको बाहर निकलना है, अब बाहर निकलने के लिए निकास का रास्ता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए दो कम से कम निकास होने चाहिए, चाहे आपके लिए उसका फ्लोर एरिया आपका कम हो रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, पर जान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी कहीं भी जाएंगे तो दो निकास की आवश्यकता जरूर पूरी करनी है। अगर वो बिल्डिंग में दो निकास की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टेयरकेस लगाइए। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है कि आप उसको लगा के जब आवश्यकता है तब वो सीढ़ियां खोल सकते हैं। तो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये आवश्यक है और फायर ब्रिगेड इसको जरूर जरूर चेक करती है। दूसरा
जी उनका दूसरा सवाल भी था कि आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनका कैसे इस्तेमाल होता है।
हाँ, आग बुझाने के जो सिलेंडर होते हैं उसमें आप अगर उसके पास में जाएंगे, आपको ज्यादा एफोर्ट करने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है, उस एक्सटिंग्विशर के पास आप जाइए। वहां पे अगर आप पढ़ना लिखना नहीं भी जानते तो पिक्टोरियल डायग्राम से बताया होता है कि आग के उस एक्सटिंग्विशर को किस तरह से उपयोग में किया जाता है। जैसे आग में अलग अलग प्रकार की आग होती है, जैसे कि सॉलिड फायर है जिसमें जो कपड़ा वुड ये सब चीजें जलती है जो ठोस पदार्थ है, फिर तरल पदार्थ की फायर होती है जिसमें तेल पेट्रोल डीजल केरोसिन नेफ्था ये चीजें होती है, फिर एलपीजी सीएनजी की फायर होती है और एक फिर मेटल फायर होती है जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की फायर है, उसमें जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर सॉलिड फायर में यूज किए जाते हैं, ठोस पदार्थ पे यूज किए जाते हैं, लिक्विड फायर पे फोम एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, जो फोम झाक जिसको कहते हैं कि जो तरल पदार्थ पे जैसे हमारा झाक होता है उस पर ढक जाता है लिक्विड पे और उस पर ऑक्सीजन का प्रश्न जो है बहाव कट किया जाता है और आग बुझती है। तीसरा है गैस फायर होती है, गैस फायर में डीसीपी CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। तो ये जनरली हमारे समाज में तीन ही प्रकार की आग होती है, ये जो बाकी मेटल फायर है वो इंडस्ट्री में होती है। तो आप किसी भी एक्सटिंग्विशर के पास में जाएंगे उस पे ये पिक्टोरियल डायग्राम में आपको दर्शाया जाता है किस तरह से आपको आग बुझानी है। एक बार आप उसके पास में जाके बस 10 मिनट आप देख लीजिए, 5 मिनट देख लीजिए, आप नॉलेज इज द मतलब सक्सेस और नॉलेज इज एनलाइनमेंट, तो आपको पता चलेगा किस तरह से उपयोग होता है।
और दिल्ली से हमारे अगले श्रोता एनपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, सवाल पूछिए।
सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी।
नमस्कार,
मेरा ना मतलब एक गोडाउन है 100 square feet का, तो उसमें जैसे सॉलिड फायर का ही है सारा मटेरियल, लेकिन हम उसके लिए एक हम कितनी एक क्या कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो यही था कि वो कौन कौन से फायर होती है, वो आपने पहले ही बता दिया। और दूसरा है कि हमारी फैक्ट्री में बॉयलर है, तो बॉयलर के लिए जैसे कोई फटने का बड़ी घटना हो जाती है, तो हमें उस बॉयलर के प्रिकॉशन के लिए क्या चीजें हम अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। मेरे दो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए।
हाँ, तो पहला आपने सवाल पूछा कि बॉयलर का
सॉलिड फायर के बारे में पूछा था।
सॉलिड फायर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉलिड फायर आपके यहाँ पे जो आपने ये नहीं बताया मुझे कि वहाँ पे क्या आपने रखा है, सॉलिड क्या है। सॉलिड तो बहुत सारी चीजें, पकड़ा कपड़ा भी है, लकड़ी भी है, बहुत सारी प्रकार के सॉलिड्स है। तो सॉलिड कौन सा है, वो कौन सा फ्लेमेबल कैटेगरी में आता है, अलग अलग प्रकार की फ्लेमेबल कैटेगरी है। बट जैसे कि आपने नहीं बताया, मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि अगर कोई भी सॉलिड पदार्थ है जो जलने वाला है तो पहले तो आप उसको किस तरह का है वो मतलब आप जैसे बताएंगे तभी आप हम बता पाएंगे। बट एक जनरल उसका रूल है कि आप उसी अगर जलने वाली चीज है उसको आइसोलेट करिए, वहां पे आपका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो कंसोल्ड हो, एनक्लोज हो, वो स्पार्किंग आर्सिंग की वहां पे संभावना ना हो, उसका रेगुलर चेकअप हो। और बाकी आपने कहा एक्सटिंग्विशर्स, तो अभी वो रूम कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है। जैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है हमारे ट्रैवल डिस्टेंस में, जो कहते हैं कि 15 मीटर के ट्रैवल डिस्टेंस में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, या 100 मीटर स्क्वायर एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बट अब वो नॉर्मल एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में है। बट जब जहां पर आप स्टोरेज की बात करती है तो हमारी बिल्डिंग की 9 कैटेगरीज है, जो रेसिडेंशियल लेके तो हजार्डस एरिया में, तो स्टोरेज जो है वो हमारे हिसाब से काफी खतरे वाला एरिया होता है। तो स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है, एक्सप्लोजिव है, नॉर्मल स्टोरेज है, तो उसके हिसाब से उसमें बहुत सारे ये सिस्टम्स का डिजाइन भी किया जाता है। नेशनल बिल्डिंग कोड के उसमें ये सारी प्रावधान दिए है कि किस तरह का मटेरियल है उसकी कैसे रक्षा किया जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम लगनी है वहां पे, डिटेक्शन सिस्टम लगनी है, या आपको हाइड्रेंट सिस्टम लगाना है, कितना पानी चाहिए, वो सारा निर्भर करता है कि जलने वाला पदार्थ आपने स्टोरेज क्या किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको कंपार्टमेंटेशन करना है, उसको अलग से रखना है जो वहां पे मटेरियल और जो जलने आग लगने के लिए जो चिंगारी चाहिए, एक कहते हैं कि आग लगने वाला सामान जो आपके पास है, दूसरा है उसका जो स्पार्किंग है, आर्सिंग है, जो जिससे आग जलेगी, तो ये चीजों का संयोग साथ में नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होनी चाहिए, ये ध्यान आपने रखना चाहिए।
बॉयलर के बारे
बॉयलर के बारे में आपने जो पूछा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर्स इसमें काफी प्रकाश डालेंगे, बट बॉयलर्स में आपका एक अपने आप में पूरा एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जब भी बॉयलर इंजीनियर्स आपके पास आते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका एक सेफ डिजाइन प्रेशर होता है, उतना ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, उसकी जो टेस्ट होती है अलग अलग प्रकार की, और उसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, वो इतने प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे ही वो काम करना चाहिए, उसके ऊपर अगर वो प्रेशर चला जाता है तो बॉयलर फटेगा। तो वो आपको मॉनिटर करना है, आपके पास कंट्रोल रूम होनी चाहिए, आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंड होनी चाहिए कि आपका बॉयलर काम कर रहा है तो आपने क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं, उसका टेम्परेचर कितना जा रहा है, उसका प्रेशर कितना जा रहा है, वहां पे आसपास लोग क्या काम कर रहे हैं, वहां पे वायरिंग कैसी है, रेगुलर मेंटेनेंस उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप उसका कर रहे हैं कि नहीं है, तो हर रोज उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, वो आपने किया है, उसमें जो चेक्स है वो चेक्स एंड बैलेंसेस आपने किए हैं, आपका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता चला कि आपका वो प्रेशर रिलीफ वाल्व कंपनी ने बैठाया फिर दो साल बाद आपने उसका उपयोग किया और कभी आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। मेरा यही आपको दरख्वास्त है कि एक्सपर्ट से, आप जो बॉयलर एक्सपर्ट है उस पर जरूर एक बार राय।
एनपी सिंह जी, मैं एक चीज और बताना पाऊंगा, छोटी सी टिप देता हूँ जिससे आपके यहाँ कभी आग ना लगे। अगर आपका स्टोरेज 100 मीटर का गोडाउन है, आप इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सिस्टम सब गोडाउन से बाहर ले जाइए। दूसरा, जो अंदर लाइट्स है उसके पास कुछ जगह छोड़िए, वहाँ पे सामान स्टोर ना करें। मैंने देखा सामान आप बिल्कुल छत तक स्टोर कर देते हैं और कभी भी उसमें स्पार्क हुआ, कुछ हुआ तो आग लगने, तो आप इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बोर्ड सब गोडाउन से बाहर ले आइए और जहाँ पे लाइट, फैन, जो भी चीज़ है उसके आसपास जगह छोड़िए, वो इसलिए कि इनकेस अभी फायर स्पार्क हो तो आग वहाँ लगेगी नहीं, तो इससे आपके गोडाउन में कभी आग लगेगी नहीं। बहुत बहुत
धन्यवाद। और इस बीच सोलापुर महाराष्ट्र से अगले श्रोता है प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है?
नमस्ते।
नमस्ते,
नमस्कार।
हेलो हेलो।
हाँ जी, सवाल पूछिए आपका।
मेरा सवाल है, मैं प्रकाश राउत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अभी तेलंगाना और सोलापुर में जो कंपनी में स्पोर्ट हो गया, उसके जानमाल का नुकसान हो गया, और उसमें जो कंपनी में स्थापना जो फायर सिस्टम होती है वो सक्षम करनी चाहिए, और उसका ऑडिट होने के लिए, निरंतर ऑडिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये प्रकाश जी नमस्कार, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, कंपनी का ऑडिट हमेशा होना चाहिए और हर शहर की फायर ब्रिगेड हर 3 साल में हर एक कंपनी का, हर एक बिल्डिंग का ऑडिट करती है। अगर आपकी कंपनी के यहाँ ऑडिट नहीं हुआ है तो आप तुरंत वहाँ के लोकल फायर ब्रिगेड को लिखें कि इस कंपनी का ऑडिट किया जाए और इसमें जो भी कमी पेशी है वो बताया जाए। ये बिल्कुल बाय लॉ भी जरूरी है और अगर आग लगी तो ये होना ही होना चाहिए। हर कंपनी का, हर बिल्डिंग का ऑडिट बाय लॉ पूरे इंडिया में कंपलसरी है और फायर ब्रिगेड जो है ड्यूटी बाउंड है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको ऑडिट करना है तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट फायर स्टेशन को अप्रोच करें और उनको बताएं यहाँ पे आग लगी थी, इसका तुरंत फायर ऑडिट किया जाए और ये ऑडिट जरूर होगा
जी। और ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से हमारे साथ है फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं?
नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा जी। मैं ये पूछता हूँ, जैसे अन्य कई प्रकार की फोबिया है, क्या ऐसे में कुछ लोगों को ऐसी विशेष यानी होता है फोबिया, अग्नि फोबिया, उस समय वैसे लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कृपया इस पर प्रकाश डालें, आपका धन्यवाद, आभार।
ओम प्रकाश जी नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल है पर मेरे ख्याल से ये आपका सवाल डॉक्टर को होना चाहिए कि फोबिया का इलाज हम बता सकते हैं, अग्नि फोबिया का मतलब क्या उसमें होता है, बट ये जैसे कि अगर आग में जो है धुआं जो है वो उससे एक्चुअली ये एक इमोशनल सेटबैक होता है। जब भी कोई ऐसी आग की दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो है आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटना है जो एकदम से हो गई है, इसीलिए हम उसको इमरजेंसी कहते हैं, इसके लिए उसको आपात कहते हैं। तो उसमें एकदम से आपका टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरमेंट का टेम्परेचर गया 100 डिग्री सेल्सियस, धुआं आपका इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको सांस लेना नहीं हो रहा, तो ये सारी जो मेंटल, इमोशन और फिजिकल फिटनेस, ये सारा का कॉम्बिनेशन से आपका जो है एक डर बन जाता है। तो इसके लिए हम कई बार आपको कहते हैं कि इसके लिए आपको एक चाहिए, इस फोबिया को बाहर निकालने के लिए आप मॉक फायर ड्रिल आप कराइए। जैसे गर्ग साहब ने अभी बताया कि आप लोगर फायर सर्विस को आप कांटेक्ट करिए और आपकी इंडस्ट्री है, आपकी जो बिल्डिंग है उसमें एक मॉक फायर ड्रिल होती है कि एक ऐसा सीन क्रिएट करिए कि यहाँ पे जो है आपके बिल्डिंग में आग लगी या कोई कैजुअलिटी होगी तो आपको कैसा, आपको क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे बाहर आना है, अगर कोई एक्सटिंग्विशर यूज करना है कैसे करना है, उसमें आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए। तो आप अगर उस प्रोसेस से जाएंगे ना, मॉक जिसको हम सिमुलेटर ट्रेनिंग आजकल होती है सब जगह पे, तो उससे आप उस प्रोसेस से जाएंगे तो वो इमोशनल ट्रामा से भी आप गुजरेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मेरी बर्थ साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक ट्रेनिंग में एक बच्ची को बताया था कि कैसे बाहर निकलना है क्रॉलिंग करके, तो उसने एक अपने दादा दादी की जान बचाई। गर्ग साहब शायद उस पर फोकस करेंगे। तो इस तरह से आप एक ऐसा ट्रेनिंग लीजिए, मॉक ड्रिल करिए आप लोगों को मिलके, तो इस फोबिया से आप बाहर निकलेंगे, और ऐसी आपात की घटना होती है तो 100% आप बहुत अच्छे से इसको उसको सामना कर पाएंगे।
एक और हमारे श्रोता इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर है, श्रीपद जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
हेलो
जी,
सवाल सर, नमस्ते।
हाँ नमस्कार, नमस्कार बोलिए।
हाँ मेरा सवाल ये है कि जो अस्पताल में जो आग लगने की जो घटनाएं होती है, तो जो मतलब पेशेंटों के बचाव के लिए तत्काल क्या उपाय करते हैं, मतलब एकदम क्या होना चाहिए, मतलब
जी अतुल जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
श्रीपद जी नमस्कार। देखिए जो भी अस्पताल होते हैं, क्योंकि अस्पताल में पेशेंट होते हैं जो चल नहीं सकते, हार्ट पेशेंट होते हैं, तो उसमें ये हरेक नॉर्मली हर अस्पताल में ही होता है कि कंपार्टमेंटेशन होता है, मतलब अस्पताल को कई भागों में बांटा जाता है। आग लगी तो हम तुरंत उस दूसरे एरिया में जो सुरक्षित एरिया है उसमें उसको शिफ्ट कर दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, हार्ट पेशेंट है, तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, और इमीडिएटली मान लीजिए वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है तो एक पेशेंट को निकालने में चार आदमी लगेंगे उसको उठा के अगर आप ले, तो इसलिए हर अस्पताल में जो ये सिस्टम होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अगर आप हिंदी बताएं, और हम एक एरिया से लेके उसको दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो उसमें आग जाने के धुएं जाने के चांस कम होते हैं। तो इसी तरह से हर एक अस्पताल में पेशेंटों को बचाने का प्रावधान हर अस्पताल में होता है।
और शिमला से राकेश जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, राकेश जी आपका प्रश्न क्या है?
सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि जंगल में आग लगती है, कोई माचिस की तीली फेंकता है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें?
जी हाँ प्रशांत जी,
आपका बहुत अच्छा सवाल है। शिमला से राकेश जी सबसे पहले नमस्कार आपको। जंगल में आग जो है ये भारत सरकार के संज्ञान में भी काफी गंभीर मसला है, और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं एनडीएमए के साथ मिलकर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में, और एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हमारा चलता है, और इसमें जो है कि एक हमारा एक सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, तो उसमें एक जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक अत्याधुनिक केंद्र है, तो उसमें अगर ऐसी कोई घटना घटती है जंगल में आग लगती, तो सैटेलाइट के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि इस एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर डेवलप हुआ है, हीट डेवलप हुई है, तो वो सिग्नल आपके लोकल फायर ब्रिगेड्स को या मतलब लोकल जो रेंजर्स है या गार्ड्स है वहाँ पे वो जाता है, और उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाती है। ऐसा जंगल की जो आग है वो अपने आप में बहुत बड़ी और भयावह है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाई ह्यूमन एफर्ट्स, तो उसके लिए कई सारे बहुत महंगे इक्विपमेंट्स है, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से फायर फाइटिंग भी करते हैं, बट जो देसी मतलब जो हमारा जो नॉर्मल तरीका है उसमें एक हम फायर लेन बनाते हैं। तो फायर लेन कैसा बनाते हैं कि कुछ जगह छोड़ के उसके बाद एक जगह को बैरन करते हैं, वहां पे कोई जलने वाला पदार्थ या लकड़ी ऐसा नहीं होगा, उसको साफ कर देते हैं, तो उस जगह तक वो फायर आती आएगी, जल्दी आएगी, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी, उसको फायर लेन के प्रकार से समझते हैं, तो ताकि वो आग आगे नहीं बढ़ेगी, ये एक सबसे बड़ा काम करते हैं। उसके बाद दूसरा सरकार ने ये किया है कि ऐसी जो घटनाएं घटती है उसके लिए हमने एक टीम्स बनाई है अलग अलग जगह पे, जैसे कि बहुत डीप फॉरेस्ट में उन लोगों को स्कूलों में वॉलंटियर्स बनाए हैं, उनके पास मोबाइल एप्लीकेशंस दी है, और ऐसी कोई घटना आती है तो तुरंत उस एप्लीकेशन पे डाल के वो उसको कर सकते हैं। धन्यवाद।
और ओडिशा से पद्मलोचन जी हैं, पद्मलोचन जी जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, नमस्ते दोनों एक्सपर्ट को,
सवाल पूछिए।
हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर जो गैस होता है उनको ज्यादा प्रोडक्शन करके उसको जो ही फायर होता है उस जगह पर यूज करने से फायर भी कम हो सकता है।
जी अतुल जी,
जी देखिए ये आप कह रहे हैं गैस बुझाने के प्रोडक्शन को ज्यादा यूज करने से आग नहीं बुझता, आग आपका तभी बुझा सकता है जब आप ट्रेंड हो, आपको ट्रेनिंग हुई है और आप प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि अगर आग लग जाती है तो फिर वो उसको बुझाना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपको बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत वॉल्यूम ऑफ गैस लगता है। देश में प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, देश में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो देश में फायर बुझाने के साधन समुचित है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि देश के पास साधन नहीं है, पर आग बुझाने के लिए आपको की ट्रेनिंग, आपका जागरूक रहना, आपके प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।
और प्रशांत जी और अतुल जी, फिलहाल तो कार्यक्रम में समय हमारे पास बहुत अधिक अब नहीं बचा है कि अपने श्रोताओं के अन्य प्रश्नों का हम उत्तर दे सके, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।
तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार रात 9:30 बजे। नमस्कार।